भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने के उपरांत जिससे संबद्ध शुक्ल जी के विवादास्पद उद्धरण को हम पीछे दे चुके हैं, शुक्ल जी ने भक्ति काल की धार्मिक स्थिति का भी जायजा लिया है। यहाँ वे कहते हैं, धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कहीं दबती कहीं उभरती किसी प्रकार चली आ रही थी। इसी प्रसंग में वे कहते हैं, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए दूसरा पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। इसके पहले उनका कथन है, सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। सच्चे धर्म भाव के ह्रास को उन्होंने इस प्रकार समझाया है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आज काल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान और तीर्थाटन पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात शुक्ल जी का यह कथन हम पीछे उद्धृत कर चुके हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि अर्थ शून्य बाहरी विधानों की निस्सारता का प्रतिपादन नाथों और सिद्धों ने किया जरूर, परंतु उनका उद्देश्य कर्म को तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बार की किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। अपनी इस चर्चा में उन्होंने यह भी कहा है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध संत नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया। उसके पीछे कबीर ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित ढंग से यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। कुछ आगे चलकर शुक्ल जी ने लिखा है, कालदर्शी भक्त कब जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का ऐसा प्रवाह विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। जिन कालदर्शी भक्त कवियों की ओर शुक्ल जी ने ऊपर संकेत किया है, उनमें कबीर दास भी हैं, जिनके बारे में कहा गया है शुक्ल जी ने न्याय नहीं किया है। शुक्ल जी लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। आचार्य शुक्ल के ये कुछ कथन है जिनके साक्ष्य पर भक्ति, भक्तिकाल और भक्ति काव्य के बारे में उनके दृष्टि को आंका जा सकता है। भक्ति, भक्तिकाल और भक्ति काव्य के विवेचन की दिशा में आचार्य शुक्ल के उपरांत आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी अपनी महत्वपूर्ण स्थापनाओं को लेकर सामने आए। अपनी स्थापनाएं उन्होंने आचार्य शुक्ल तथा इस विषय पर लिखने वाले कतिपय अन्य देशी विदेशी विद्वानों की मान्यताओं को काटते हुए और जैसा कि उन्होंने आगे स्वतः स्वीकार किया है, आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए प्रस्तुत की। शुक्ल जी की इस मान्यता का कि उत्तर में भक्ति काल और भक्ति काव्य का उदय इस्लामी आक्रमण से पराभूत और हताश हिंदू जाति के पराजित मनोभाव का परिणाम है, आचार्य द्विवेदी ने कड़ा प्रतिवाद किया। उन्होंने लिखा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य शुक्ल के इस कथन का कि भक्ति का भी हिंदू जाति के पराजित मनोभाव का परिणाम है प्रतिवाद करते हुए उन्होंने लिखा कि सूरदास और तुलसीदास आदि वैष्णव कवियों की समूची कविता में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नहीं है। जिस समाज को वे भक्तगण सुधारना चाहते थे उसमें विदेशी धर्म का कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य नहीं किया था। अपने पहले के कथन को कुछ स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इन सब का अर्थ यह नहीं कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव साहित्य पर नहीं पड़ा है। कदाचित 4 आने का अवकाश इसीलिए उन्होंने छोड़ा भी है, किंतु उनके अनुसार प्रभाव को प्रभाव रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया रूप में नहीं। एक बात आचार्य द्विवेदी ने और भी कही, वह यह कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षा के निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान के शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्त की भावधारा को उभरना था तो पहले उसे सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास संस्करण 1969 पृष्ठ 55। भक्ति के उदय को आचार्य द्विवेदी ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न मानकर भारतीय चिंताधारा और भारतीय धर्म चेतना के स्वाभाविक पंडित के रूप में देखा। उसे उन्होंने इनके लोक की ओर झुकने का परिणाम माना। इसके मूल में उन्होंने बाहरी कारणों की तुलना में भीतरी शक्ति की ऊर्जा देखी और लिखा, भारतीय पांडित्य ईसा की 1 शताब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न भी घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले जा रही थी। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ 15। लोक शक्ति को ही भीतरी शक्ति मानते हुए इस प्रकार आचार्य द्विवेदी ने भक्ति के उदय को इस्लाम और हिंदू धर्म के संघर्ष का परिणाम न मानते हुए शास्त्र और लोक के द्वंद्व की उपज माना, जिसमें लोक की शक्ति प्रभावी साबित हुई। साहित्य में इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप पड़े प्रभाव को बहुत तरजीह न देते हुए भी, जैसा कि उनके ऊपर के कथनों से स्पष्ट है, आचार्य द्विवेदी ने समाज पर इस्लामी आक्रमण के गहरे और तीव्र प्रभाव को स्वीकार किया और समाज पर इस आक्रमण की कठोर, अत्यंत कठोर प्रतिक्रिया को भी रेखांकित किया। अपनी कबीर शीर्षक पुस्तक में भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान शीर्षक अध्याय प्रारंभ में उन्होंने लिखा है, जिस युग में कबीर आविर्भूत हुए थे उससे कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी। यह घटना इस्लाम जैसे एक सुसंगठित संप्रदाय का आगमन था। इस घटना के ने भारतीय धर्म मत और समाज व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया था। उसकी अपरिवर्तनीय समझे जाने वाली जाति व्यवस्था को पहली बार जबरदस्त ठोकर लगी थी। सारा भारतीय वातावरण संक्षुब्ध था। बहुत से पंडित जन इस संक्षोभ का कारण खोजने में व्यस्त थे और अपने अपने ढंग पर भारतीय समाज और धर्म मत को संभालने का यत्न कर रहे थे। आचार्य द्विवेदी द्वारा पेश की गई इस पहेली में न उलझते हुए कि इस्लाम आक्रमण का जो प्रभाव समाज पर इतना कठोर हो और सारे सामाजिक वातावरण को भयानक रूप से संक्षुब्ध कर देने वाला हो, साहित्य जो सामाजिक जीवन स्थितियों की ही संवेदनात्मक अभिव्यक्ति होता है उस पर इस आक्रमण का प्रभाव महज 4 आने या कि नगण्य हो, ऐसा कैसे संभव है। हम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि भक्ति के उदय के बारे में जो मान्यताएं आचार्य द्विवेदी ने प्रस्तुत की हैं, वे निश्चय ही आचार्य शुक्ल की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक तर्कपुष्ट एवं वैज्ञानिक हैं। भक्ति काव्य को हम भी निराश और हताश हिंदू जनता की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम नहीं मानते और न ही भक्ति काव्य को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, जैसा कि आचार्य शुक्ल के विचारों से प्रकट होता है। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी की मान्यताओं पर सापेक्ष ढंग से अब हम कुछ विस्तार से कहना चाहेंगे और देखेंगे कि अपनी मान्यताओं के चलते आचार्य शुक्ल क्या सचमुच सांप्रदायिक इतिहास दृष्टि के शिकार हुए हैं और आचार्य द्विवेदी की इतिहास दृष्टि सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, और यह भी देखना चाहेंगे कि क्या वस्तुतः शुक्ल जी के विचार आचार्य द्विवेदी के विचारों से एकदम अलग हैं अथवा दोनों में कहीं समान रूपता भी है। इस विषय पर विचार करना इस नाते जरूरी है कि इन दोनों आचार्यों की मान्यताओं और दृष्टिकोणों को लेकर हिंदी में काफी कुछ सही गलत लिखा गया है, जिसमें भ्रम भी फैला है और बातें आगे भी खींच कर ले जाई जाती रही हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल की मान्यता को लें। हम कह चुके हैं भक्ति काल के विवेचन में अपने इतिहास में राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए जो पूरा का पूरा पैराग्राफ शुक्ल जी ने लिखा है और जिसे हम उद्धृत कर चुके हैं तथा उसी तरह के जो दो एक अन्य कथन उन्होंने किए हैं वे सही नहीं हैं। वे भक्तिकालीन स्थितियों के मुख्य अंतर्विरोध को नजरअंदाज करने वाले हैं और बड़े सरल तरीके से सारी बात को इस्लाम और हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। जो कुछ भी आचार्य शुक्ल ने इन कथनों में कहा है या कहना चाहा है उसे आसानी से उनके सांप्रदायिक मनोवृत्ति का इजहार माना जा सकता है। इन कथनों से उत्पन्न इस निष्कर्ष को डिफेंड करने या उसे कमतर करके आंकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े मार्क्सवादी पक्षधर डॉक्टर रामविलास शर्मा भी अंततः शुक्ल जी की इस मान्यता को अस्वीकार ही कर पाए हैं, उसे डिफेंड करने का प्रयास उन्होंने भी नहीं किया। हम यहाँ जो कहना चाहते हैं वह यह कि आचार्य शुक्ल हों या आचार्य द्विवेदी या कोई और, किसी के दृष्टिकोण पर निर्णयात्मक रूप से कहने से पहले हमें उसके समग्र दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिए, अंश मात्र को नहीं, और यह भी देखना चाहिए कि यदि किसी की अपने मूलवर्ती दृष्टि में ही अंतर विरोध है तो उसका कारण क्या है। समूचे दृष्टिकोण को विश्लेषित करके ही हमें किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। इतिहास दृष्टि की के सांप्रदायिक होने का सवाल तब उठता है जब कोई उस इतिहास दृष्टि से अनुशासित और नियंत्रित होते हुए अपने विवेचन में आगे बढ़े और उसी के अनुरूप निष्कर्ष दे। शुक्ल जी के बारे में हमारा कहना यही रहा है कि उन्होंने सिद्धांत स्तर पर की गई अपनी गलत स्थापना को अपने व्यावहारिक विवेचन में मुख्य नहीं बनाया। भक्त कवियों के विवेचन में उन्होंने इस्लाम और हिंदू के संघर्षों को न तो प्रतिफलित होते हुए देखा और न ही दिखाया। इन कवियों के विवेचन में और उनके पूर्वाग्रह जो रहे हों, मसलन कबीर को समुचित न्याय न दे पाना, सूर के साथ तुलसी की तुलना में निष्पक्षता न बरतना और इन पूर्वाग्रहों के पीछे उनकी मनोवृत्ति जो रही हो वह इस्लाम और हिंदू धर्म के परस्पर संघर्ष तथा हिंदू जात के पराजित मनोभाव की सूचक नहीं रही है। उल्टे पूर्वाग्रहों के रहते हुए उन्होंने अपने विवेचन में अपेक्षाकृत अपनी प्रशस्त दृष्टि का ही परिचय दिया है। हमने उनकी इस प्रशस्त दृष्टि को सूचित करने वाले उनके कथन भी पहले उद्धृत किए हैं। अनेक स्थलों पर उन्होंने कहा है कि कट्टर मौलवियों और पंडितों की बात और है, जहाँ तक साधारण जनता का सवाल है वह राम और रहीम की एकता पहचानने लगी थी और एक दूसरे के करीब आने लगी थी, और बहुत कुछ उन्होंने इसी मनोभूम के तहत कहा और लिखा है। जायसी तथा रसखान जैसे मुसलमान भक्त कवियों की मुक्त कंठ से सराहना की है और जायसी को हिंदी के तीन महाकवियों में एक के रूप में प्रतिष्ठा देने वाले वे ही हैं। जायसी के सेक्युलर अप्रोच को न केवल उन्होंने रेखांकित किया है बल्कि उसकी सराहना भी की है। पंडितों और मुल्लाओं के रूढ़िवाद को फटकारा भी है। कहने का अर्थ है कि उनका भक्त कवियों और भक्ति काव्य के विवेचन और मुल्लाओं के रूढ़िवाद को कहने का अर्थ है कि उनका भक्त कवियों और भक्ति काव्य का विवेचन उनकी विवादास्पद और गलत स्थापनाओं से दूषित नहीं होने पाया है। ऐसी स्थिति में उनके विशेष कथन को सांप्रदायिक इतिहास दृष्टि का प्रमाण भले माना जाए और वह है, परंतु आचार्य शुक्ल की टोटल अप्रोच को उनकी मूलवर्ती इतिहास दृष्टि को सांप्रदायिक कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। सवाल है कि उक्त गलत स्थापना शुक्ल जी ने आखिर दी क्यों? इसके कारणों की चर्चा होनी चाहिए। भक्ति काव्य के एक प्रबुद्ध अध्येता लक्ष्मी नारायण वर्मा ने इसका कारण आचार्य शुक्ल की इस धारणा को माना है कि साहित्य जनता के या शिक्षित जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। उनके अनुसार यह सरलीकरण है। उनका कहना है कि शुक्ल जी की वस्तु स्थित को ऊपरी तौर पर लेते हैं उनकी गलती यह न थी कि वे भक्ति को तत्कालीन स्थित से संबद्ध करके देखते हैं, वरन यह थी कि उन्होंने स्थित की गहराई में जाने का प्रयास करके उसको भक्ति को ऊपरी अधिरचना में घट रहे महत्वपूर्ण उदीयमान परिवर्तनों से जोड़कर समझने के बजाय सीधे सतही और यांत्रिक तौर पर इस्लाम के सामने हिंदुओं के पराजय बोध से संबद्ध करके देखा। यही नहीं, सामान्य चित्तवृत्त चाहे वह निराशा हो या आशा से संबंधित, यह सारा विवाद ही अफलप्रद एवं निष्प्रयोजन और इसीलिए अनावश्यक और निरर्थक है। जहाँ तक हम समझते हैं, ऐसे सपाट किस्म के सरलीकृत सामान्यकरणों में न तो वर्ग समाज की विषम वास्तविकता का ध्यान रखा गया होता है और न साहित्य जैसी संश्लिष्ट संरचना के मूल प्रेरणाओं की जटिलता का ही ध्यान रखा गया होता है, और इसीलिए ये विभिन्न अंतरधाराओं सहित किसी काव्यधारा की कारणता की सटीक व्याख्या करने में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। साहित्यिक परिवर्तनों को सामाजिक शक्तियों के अंतर्विरोधों से अलग करके केवल जनता की सामान्य चित्तवृत्ति के आधार पर देखने के कारण शुक्ल जी की प्रणाली में समान परिस्थितियों में प्रवाहमान विभिन्न काव्यवृत्तियों की ठीक ठीक व्याख्या न हो सकी थी। एक बात और है जिसका संबंध आचार्य शुक्ल की साहित्य और जीवन संबंधी टोटल अप्रोच से है। शुक्ल जी और प्रेमचंद के दृष्टिकोणों की तुलना करते हुए अपने एक अन्यत्र प्रकाशित निबंध में हमने इसकी ओर संकेत किया है। इस बात को कुछ और सफाई के साथ कहने की जरूरत है। आचार्य शुक्ल मूलतः बुद्धिवादी हैं, विवेकवादी हैं, किंतु उनके संस्कारों में गहरे कहीं हिंदू धर्म मत कहिए, वैष्णव आदर्श और आचार विचार कहिए, हिंदू भावना कहिए, इस प्रकार का एक भाव विद्यमान है। उनका यह संस्कार उनकी विवेचना के दौर में बीच बीच में अक्सर जागृत हो जाता है और जब भी उसका दबाव ज्यादा होता है वे कुछ इस प्रकार की सोच में भटक जाते हैं कि हिंदूपन या हिंदू भावना के प्रति उनका आग्रह साफ ऊपर आ जाता है। ऐसे अवसरों पर ही इस्लाम हो या ईसाइयत, उनके बारे में उनका और हिंदू मत के बारे में भी उनका विवेकशील अभिमत पृष्ठभूमि में चला जाता है और वे हिंदू धर्म के बरक्स दूसरे धर्मों के प्रति आलोचनात्मक टिप्पणी कर बैठते हैं। कबीर के बारे में तमाम कुछ सही लिखते हुए वह सब कुछ जिसके आधार पर कबीर संबंधी आचार्य द्विवेदी के विवेचन की प्रशंसा होती है वे उसका विस्तार नहीं कर पाते, कारण उसके विस्तार के मायने कबीर को ठेठ उस सब से विरोध में खड़ा कर देना है जिसके प्रति शुक्ल जी संस्कारगत बंधे हैं। कबीर उनके लिए एक समाज सुधारक इसलिए नहीं है कि वे परंपरागत वेद शास्त्र विहित समाज व्यवस्था को तोड़ फोड़ देना चाहते हैं जिसके प्रति संस्कारतः शुक्ल जी का लगाव है। वे हिंदू धर्म के तमाम सारे तामझाम के खिलाफ हैं, वह अवतारवाद हो अथवा और कुछ, जिसके प्रति शुक्ल जी की अनुरक्ति है। आर्य शास्त्रानुमोदित चली आ रही व्यवस्था को अपने विवेकवाद के तहत शुक्ल जी उदार जरूर बनाना चाहते हैं, न्यायोचित भी करना चाहते हैं, किंतु उसमें बुनियादी फेर बदल कदापि नहीं चाहते, जबकि कबीर का सारा विद्रोह बुनियाद के खिलाफ ही है। कबीर प्रखर प्रतिभा के धनी थे, यह बात शुक्ल जी ने 4-5 बार अपने संक्षिप्त कबीर संबंधी विवेचन में लिखी है, परंतु कबीर की वह प्रखर प्रतिभा क्या थी इसे नहीं बताया। कबीर ने बड़े नाजुक मौके पर जनता के एक बड़े भाग को संभाला, वह नाजुक मौका क्या था और किस प्रकार कबीर ने जनता को संभाला, शुक्ल जी मौन हैं। कबीर ने निम्न वर्ण की जनता के मन में आत्मगौरव का भाव जगाया, परंतु इस निम्न वर्ण के आत्मगौरव को कौन रौंद रहा था और कबीर ने उसे निम्न वर्णों को किस प्रकार लौटाया, आचार्य शुक्ल चुप हैं। इस सारी चुप्पी के मूल में आचार्य शुक्ल का बृहत्तर हिंदू व्यवस्था और आचार संहिता या धर्म विश्वास के प्रसंस्कारी आग्रह है, और यही आग्रह जब तब अन्य जगहों पर भी उभर उठा है। नागमती की सहनशीलता, विनय और यातना की चर्चा करते समय उन्हें बार बार हिंदू गृहिणी की याद आ जाती है। भारतेंदु जब पंचनद और पानीपत का स्मरण हाय पंचनद करते हुए करते हैं शुक्ल जी भावुक हो उठते हैं। बहुत से प्रसंग हैं और इस संस्कार के चलते ही भक्त काल के राजनीतिक प्रसंग पर उन्हें देव मूर्तियों का तोड़ा जाना, पूज्य पुरुषों का अपमान, सब कुछ इतना महत्वपूर्ण लगने लगता है। अपने ढंग और अपनी जगह पर उसका महत्व हो भी कि वे भक्ति काल के उदय संबंधी एक महत्वपूर्ण स्थापना उसी से जोड़ कर दे डालते हैं, जो उनकी वस्तुतः इतनी कमजोर नस बन जाती है कि जो भी चाहे उस पर अंगुली रखकर उन्हें सांप्रदायिक आग्रह से ग्रस्त साबित कर सकता है। शुक्ल जी ने भले ही मार्क्सीय ढंग का विवेचन न किया हो, भले ही भक्ति काल संबंधी उनके विवेचन में मार्क्सवाद के नजरिए से देखने पर तमाम असंगतियां और त्रुटियां दिखाई पड़े, वे भले ही अपने संस्कारों और गलत अप्रोच के चलते सांप्रदायिक मनोवृत्ति के दायरे में आ गए हों, आधारतः उनकी अप्रोच सांप्रदायिक नहीं है, वह बहुत कुछ उनके विवेकशील समीक्षक का ही साक्ष्य देती है। उनकी स्थापनाओं में हम तरमीम कर सकते हैं, उन्हें अमान्य कर सकते हैं, किंतु यह कहना कि आचार्य शुक्ल सांप्रदायिक इतिहास दृष्टि के विवेचक या इतिहासकार हैं, उनके समग्र विवेचन को देखते हुए सही नहीं है। इसके विपरीत जिन्हें आचार्य शुक्ल की तुलना में वरीयता दी जाती है, उनके विवेचन में समग्रतः ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहाँ सांप्रदायिक मनोभूम पर काव्य और रचनाकारों को विवेचित भी किया गया है। रूढ़िवाद और अंधविश्वासों को, गैर वैज्ञानिक बातों को, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि को सही बताया गया है। जर्जर कर्मकांडों की हिमायत की गई है। आचार्य द्विवेदी की भक्ति और भक्ति काल के बारे में की गई स्थापनाओं को लें और देखें कि उनमें क्या और कितना नयापन तथा मौलिकता है। हम कह चुके हैं कि आचार्य द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की तुलना में भक्ति और भक्ति काल के उदय को तार्किक ढंग से देखा और प्रस्तुत किया है। उनकी यह बात कि भक्त कवियों की वाणी में हतदर्प जात की निराशा नहीं बोलती, एकदम सही है। भक्ति के उदय को भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास था लोक धर्म की शक्ति से जोड़कर देखने संबंधी उनकी मान्यता भी बहुत कुछ तर्कसम्मत तथा ठीक है। इस्लाम और हिंदू धर्म के द्वंद्व की अपेक्षा शास्त्र और लोक के बीच के द्वंद्व की उनके स्थापना में भी बल है, किंतु सवाल यहाँ कुछ और भी हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन अथवा प्रोफेसर हेवेल की स्थापनाओं को काटते हुए आचार्य द्विवेदी ने अपनी जो स्थापनाएं रखी, हम उनकी तार्किकता को स्वीकार करते हैं, और हमने कहा भी है कि वे भक्ति के उदय को प्रामाणिक तरीके से व्याख्यायित करती हैं। किंतु इस क्रम में आचार्य शुक्ल को जिस तरह आचार्य द्विवेदी ने अपने व्यंग्य और अपनी आलोचनाओं की परिधि में लिया है, उसमें अतिरंजनाएं हैं, अतिरिक्त आक्रामकता है तथा तथ्यों की कुछ तोड़ मरोड़ है। मसलन आचार्य द्विवेदी जिस तरह हल्के ढंग से आचार्य शुक्ल के मत को रखते हैं, उससे यह ध्वनित होता है कि गोया आचार्य शुक्ल भक्ति के उद्भव या विकास से संपूर्णतः अपरिचित हो, और उत्तर में उसके उदय को महज इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया ही मानते हों। आचार्य शुक्ल ने राजनीतिक परिस्थितियों के विवेचन में जो कुछ लिखा हो, उत्तर भारत में भक्ति के उदय तथा क्रमशः प्रसार से वे पूर्णतः वाकिफ रहे हैं, ऐसा उनके कथनों से स्पष्ट है, और हम उन्हें उद्धृत भी कर चुके हैं। तब उनका शुक्ल जी की ओर संकेत करते हुए यह कहना कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि मंदिर तो उत्तर के तोड़े जा रहे थे, परंतु भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ, उसे तो सिंध में सबसे पहले आना चाहिए था, अवांछित ही लगता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले कथन को केंद्रीय मानते हुए तथा उनके समग्र दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए उनका आचार्य शुक्ल की ओर बार बार संकेत करते हुए उन्हें इस प्रकार पेश करना, गोया भक्ति के उदय के बारे में या भक्ति काव्य के उदय के बारे में उनका ज्ञान न केवल अत्यल्प वरन बहुत भ्रांत है, सही नहीं है। आचार्य शुक्ल की स्थिति को हम स्पष्ट कर चुके हैं, दोबारा हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। परंतु इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आचार्य शुक्ल ने प्रायः वह सब कहा है जिसे कहने का श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को दिया जाता है। अंतर यह है कि शुक्ल जी ने जो कहा उसका विस्तार नहीं किया और जो गलत कहा वह इतना प्रमुख बन गया कि उसी के आधार पर भक्ति और भक्ति काव्य संबंधी उनकी धारणाओं का मूल्यांकन होने लगा। मसलन शास्त्र के लोक की ओर झुकने की बात शुक्ल जी ने भी एक अधिक जगहों पर की है। लोक की शक्ति के वे आचार्य द्विवेदी की भांति ही कायल हैं। शास्त्र को वे लोक से ज्यादा तरजीह नहीं देते, परंतु शुक्ल जी की इन बातों को सही नोटिस नहीं ली गई। सूरदास पर लिखते हुए उन्होंने सूर सागर को पहले से चली आती हुई किसी लोक परंपरा की देन माना है। आधुनिक काल में काव्य के द्वितीय उत्थान की चर्चा प्रारंभ करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि पंडितों की बांधी प्रणाली पर चलने वाली काव्य धारा के साथ साथ सामान्य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्य समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। जब जब शिष्यों का काव्य पंडितों द्वारा बंध कर निश्चिष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा के जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी लोक शक्ति के महत्व से परिचित ही नहीं है, शास्त्र के निर्जीव हो जाने पर लोक से उसके पुनः प्राण पाने की बात भी करते हैं, और यह भी नहीं है कि इस्लाम के आ जाने से उन्होंने हिंदू जनता और उस जनता के कवियों को संपूर्णतः हताश और निराश ही देखा हो। वीर गाथा काल की समाप्ति करते हुए जहाँ वे हम्मीर के पराभव के बाद ध्वस्त होती हुई हिंदू राजशक्ति की बात करते हैं तथा आगे के भक्तिकाल के राजनीतिक विवेचन में हिंदू जात की हताशा और निराशा की चर्चा करते हैं, वीर गाथा काल की समाप्ति वाले प्रकरण के अंत में यह भी कहते हैं कि पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई है। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप में जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, यद्यपि वह आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 904 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी नहीं पाते। इससे तात्पर्य यह है कि आगे भी वैसी रचनाएं हुई और वे जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही होगी, यद्यपि यह चित्त वृत्ति तब प्रधान नहीं रह गई थी किंतु निशेष भी नहीं हुई होगी। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी की कुछ अन्य स्थापनाओं को देखें। मध्य युग पर लिखते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, विचार के क्षेत्र में यह युग टीकाओं का है। ज्ञान के क्षेत्र में विश्वास कर लिया गया कि जो कुछ उत्तम और अविसंवादी सत्य है वह पूर्व काल के ऋषियों आचार्यों ने लिख दिया है। इस युग के आदमी केवल उसके अर्थ समझने का प्रयास कर सकते हैं, नया कुछ नहीं दे सकते। टीकाओं की टीका और उसकी भी टीका लिखने में इस काल के पंडितों ने सारी शक्ति लगा दी। एक दूसरे प्रकार का प्रयोग संगति लगाने वाले निबंध ग्रंथ थे जो बहुत कुछ टीकाओं की श्रेणी के ही हैं। द्विवेदी जी ने टीका और निबंध ग्रंथों की रचना का जो मूल कारण बताया है वह एक मजहब के रूप में, एक अभूतपूर्व घटना के रूप में इस्लाम का भारत में प्रवेश, इस्लाम के खतरे से अपनी जाति तथा धर्म को बचाने के लिए भारतीय मनीषा उस समय जो कर सकी उसी का परिणाम टीका तथा निबंध ग्रंथ हैं। इसके माध्यम से एक आचार प्रवण धर्म मत का उदय हुआ जो सारे भारतीयों को अपने अंतर्गत समेट सके, उसी को हिंदू धर्म मत कहा गया। इस आचार प्रवण हिंदू धर्म मत में अब तीर्थ, व्रत, उपवास, समाचार आज प्रधान हो उठे। आचार्य शुक्ल ने भी मध्य युग में लिखे जाने वाले भाष्यों की चर्चा की है। उन्होंने जिन अर्थ शून्य बाहरी कर्म विधानों का उल्लेख किया है, सवाल है कि वे किसकी उपज थे? क्या वे इन्हीं टीकाओं तथा निबंध ग्रंथों की उपज नहीं थे? आखिर हजायब साहब द्विवेदी भी तो उनसे उपजी थोथी आचार प्रवणता तीर्थ व्रत उपवास आदि की बात करते हैं। शुक्ल जी ने स्पष्ट टीका निबंध ग्रंथों की बात न की हो, परंतु हिंदू धर्ममत की तत्कालीन स्थिति के बारे में उनका निष्कर्ष द्विवेदी जी से भिन्न कहाँ है। यहीं पर एक अन्य सवाल भी उठता है, इस्लाम के संकट से निदान का जो प्रयास द्विवेदी जी ने टीका तथा निबंध ग्रंथों की रचना में देखा है, क्या वह संभव नहीं है? और इस प्रकार के टीका तथा निबंध ग्रंथ इस्लाम के संकट से पहले भी उपजे हों, अर्थात वे सीधे इस्लामी संकट का परिणाम न हो, चले आते परंपरागत धर्म को चुनौती इस्लाम से तो मिली, परंतु यह तो कुछ बात की बात है, उसे चुनौती तो पहले भी भीतर से मिल रही थी। यह चुनौती थी नाथों और सिद्धों की ओर से, और ऐसी स्थिति में क्या संभव नहीं है कि चले आते हुए धर्म को आचार प्रवण बनाने का प्रयास टीका तथा निबंध ग्रंथों के माध्यम से पहले भी हुआ हो? उसका सीधा संबंध इस्लाम की तरफ से आने वाले संकट को ही क्यों माना जाए? कहने का मतलब यह कि टीका तथा निबंध ग्रंथों की यह परंपरा बाहरी चुनौती के साथ साथ आंतरिक चुनौती का भी प्रतिफल मानी जा सकती है। द्विवेदी जी ने इस संभावना की ओर कोई संकेत नहीं दिया है। शुक्ल जी और द्विवेदी जी के चिंतन पर जो अंतर इस बिंदु पर है वह यह कि जहाँ द्विवेदी जी की तमाम प्रकार की निस्सार आचार प्रवणता का कारण इन टीका ग्रंथों को मानते हुए उनका संबंध इस्लाम की चुनौती को मानते हैं, वहाँ शुक्ल जी उसके मूल में नाथपंथियों तथा सिद्धों को देखते हैं। निष्कर्ष दोनों में एक हैं, कारण अपने अपने। नाथपंथियों तथा सिद्धों पर भी द्विवेदी जी टिप्पणी करते हैं, और मजे की बात यह है कि आचार्य शुक्ल की टिप्पणी से भिन्न नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों और नाथपंथियों का उद्देश्य कर्म को तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बार की किनारे ढकेल देना था, जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से हटाने लगे। सामान्य अशिक्षित जनता या अर्धशिक्षित जनता पर उनकी वाणियों का प्रभाव, इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। द्विवेदी जी भी लगभग ऐसा ही कुछ कहते हैं। ऐसी ही स्वाधीन चिंता की कुंठा के समय बौद्ध और सिद्धों ने अपनी अखर शैली में बाह्याचार और निरर्थक रूढ़ियों का विरोध किया, परंतु उनके पास देने लायक कोई नई सामग्री नहीं थी, केवल अर्थहीन आचारों का विरोध भर करते रहे। यदि हम दोनों विद्वानों के कथनों को साथ साथ देखें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि अर्थहीन आचारों की प्रधानता आज काल में भी थी और आगे भी वह मुसलमानों के आगमन के बाद बढ़ती गई। इसका साक्ष्य निर्गुण संतों की रचनाएं देती हैं, जिनमें उनका कड़ा विरोध है। आजकाल में और फिर बाद में जो इस प्रकार के कर्मों को स्मार्ट जनता के बीच बढ़ावा मिला वह बिना धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव संभव न था। इस संदर्भ में हमें यही समझ रखनी चाहिए, सिद्धों और नाथों ने इन विधानों में जो गुणात्मक परिवर्तन किया वह तंत्र मंत्र में उलझाने वाला था, तथा इस्लाम ने इनमें जो बदलाव किया वह इन्हें फिर अपने तंग कर्मों के रास्ते पर पहुँचाने वाला था। यही दोनों का अंतर है। यही वह समय था जब दक्षिण से आई भक्ति ने उत्तर को धक्का दिया। मुसलमानों के आगमन के बाद भारतीय समाज व्यवस्था कर्मकांड जात पात और ऊंच नीच की किन संकीर्णताओं में जा फंसी और उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी चर्चा हजारी प्रसाद जी करते हैं। शुक्ल जी यहाँ मौन है। द्विवेदी जी लिखते हैं, इस देश की धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर इसकी बड़ी ही कठोर प्रतिक्रिया हुई। भारतीय समाज धीरे धीरे अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप में सिमट गई। ऊंची समझी जाने वाली जातियों में सुरक्षित स्थान में पहुंचकर अपनी विशेषता बनाए रखने का उद्योग शुरू हुआ और देश विशेष के नाम से अपना परिचय देने की प्रथा चल पड़ी। फिर वे आगे लिखते हैं, जात पात के कुफ्र को तोड़ने वाले धर्म संप्रदाय में अपने आने के बाद हिंदुओं की जात पात की प्रथा और संकीर्ण हो गई। इस कसाव का परिणाम यह हुआ कि किनारे पर पड़ी हुई बहुत सी जातियां छट गईं और बहुत दिनों तक ना हिंदू ना मुसलमान बनी रहीं। पार्श्वत मत को मानने वाले बहुत सी जातियां और सन्यासी से गृहस्थ बनी जातियां धीरे धीरे मुसलमान होने लगी। उन्होंने कबीर दादू जैसी अब्दुल रहमान को इस प्रकार की जात का या नाम मात्र का मुसलमान घोषित किया है और बताया है कि आश्रम भ्रष्ट सन्यासियों गृहस्थ योगियों के मुसलमानों में रूपांतरित होने के समय ही ये पैदा हुए थे, इसलिए योगियों में काफी संस्कार उनमें थे। द्विवेदी जी के इस तर्क में बहुत वजन नहीं देख पड़ता, क्योंकि जिन योगियों के प्रबल संस्कारों को देखकर द्विवेदी जी ने इनकी पूर्ववर्ती जाति का अनुमान किया है, उस समय इनसे भी ज्यादा गया गुजरा एक वर्ग और था जिस पर इतना ही प्रबल कुछ कमोवेश योगियों सिद्धों नाथों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन न तो वह योगी है न रूपांतरित मुसलमान। रैदास नामदेव मलुकदास ऐसे ही लोग हैं जो जाति के निम्न हैं, योगियों से प्रभावित हैं। उसी प्रकार जैसे कबीर फिर कबीर दादू आदि अपने को कभी योगी घोषित भी नहीं करते, ऐसी स्थिति में आचार्य द्विवेदी की बात बहुत वजनदार नहीं लगती। हमारी दृष्टि में इसका प्रधान कारण यह हो सकता है कि उस युग में जो परिवेश था वह योगियों के सामाजिक धार्मिक प्रभुत्व वाला था और उससे न तो उस समय की सामान्य जनता बच पाती है न ही कबीर दादू रैदास मलुकदास आदि। ऐसी स्थिति में इस समान या सामान्य प्रभाव की अनदेखी करके और सबके बीच से केवल कबीर दादू अब्दुल रहमान जैसों को ही युगी जात से जोड़ने वाला कोई तात्विक आधार नजर नहीं आता। वस्तुतः तत्कालीन समाज व्यवस्था में उच्च वर्गों के बरक्स अपमानित निम्न वर्गों के पास इसके अलावा कोई उपाय न था कि वे अपनी अस्मिता को बचाने और हीन भावना से उभरने के प्रयास में नाथों और सिद्धों के पास जाता, उनके प्रभाव में आता और उच्च वर्गों के प्रति उनके खंडनात्मक विचारों तथा योग आदि को ग्रहण करता। यह तो आगे चलकर भक्ति के संस्पर्श से खंडनात्मक वृत्ति तथा योग आदि की बातें पृष्ठभूमि में गईं। उच्च वर्ण यदि नाथों सिद्धों से अप्रभावित हुआ तो उसका कारण मूलतः यह था कि उनके पास सामाजिक दृष्टि से एक सम्मानास्पद वर्णगत जातीय आधार था, गो कि यह आधार उस समय बहुत रूढ़ रूप में था, लेकिन था तो नाथों सिद्धों की उत्तर भारत के पंडित वर्ग पर क्या प्रतिक्रिया हुई इस संबंध में शुक्ल जी और द्विवेदी जी के विचारों को जानना भी आवश्यक है। शुक्ल जी लिखते हैं, शास्त्र के विद्वानों पर सिद्धों योगियों की वाणियों का कोई असर न था, वे इधर उधर पड़े अपने कार्य करते जा रहे थे, पंडितों के शास्त्रार्थ होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ लिखे जाते थे, विशेष चर्चा वेदांत की थी। आचार्य द्विवेदी जी इस बारे में अभिमत है, बौद्ध धर्म का इस देश से जो निर्वासन हुआ उसके प्रधान कारण है शंकर कुमारिल और उदयन आदि वेदांतिक और मीमांसक आचार्य। ये आचार्यगण दार्शनिक पंडित थे, इनकी प्रतिभा और विद्वता अनुपम थी, अतः इनके द्वारा बौद्ध धर्म के निर्वासन और निरसन का यही अर्थ हो सकता है कि बुद्धिजीवियों और ऊपरले लोगों के मन से बौद्ध धर्म के दार्शनिक युक्ति जाल के प्रति आस्था उठ गई। ये असल में बौद्ध तत्ववाद के कायल थे, भक्तिवाद के नहीं, पर साधारण जनता का तत्ववाद से कोई संबंध नहीं था। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ 16। वस्तुतः शुक्ल जी और द्विवेदी जी के विचारों को निष्पक्षता से देखें तो उनमें बहुत तात्विक अंतर नहीं दिखाई देता। शुक्ल जी ने जिन नाथों और सिद्धों की बात की है वे भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा के परवर्ती सहजानी बज्रयानी सिद्ध या फिर बौद्धों और स्वयं से मिले जुले रूप में बने नाथपंथी योगी थे। शुक्ल जी पंडित वर्ग पर इनके नगण्य प्रभाव की चर्चा करते हैं। द्विवेदी जी का अहमत भी यही है, हाँ वे बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं है कि निरसन का कारण बौद्ध धर्म के ऊपर से आस्था का उठ जाना था। द्विवेदी जी ने इस क्रम में एक बात और कही है जो शुक्ल जी के यहाँ नहीं है, वह यह कि वे बौद्ध धर्म के तत्ववाद के कायल थे लेकिन उनके भक्तिवाद नहीं थे, कि भक्तिवाद के नहीं। निश्चय ही यह बात सच है, पर बौद्ध तत्ववाद से अपने इस कायल होने का उपयोग या तो वे उन तत्वों को अपने भीतर पचाने में या अपने पक्ष में धनात्मक रूप से इस्तेमाल करने में किया, या फिर उनकी काट छांट कर या खंडन कर अपना मत स्थापित करने में किया। यहाँ यह भी कहना जरूरी है कि हिंदी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी हिंदी साहित्य पर बौद्ध धर्म के प्रभाव की चर्चा जितने व्यापक रूप में करते हैं वह प्रभाव वस्तुतः वैसा नहीं है। सार्थक आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के भक्तिकाल और भक्ति काव्य के बारे में की गई स्थापनाएं उतनी भिन्न नहीं है जैसा कि उन्हें प्रचारित किया गया है। दोनों आचार्यों ने भक्तिकाल और भक्ति काव्य की समझ हमें दी है, उनके स्थापनाएं जहाँ भ्रांत हैं हमने उन्हें स्पष्टतः रेखांकित किया है, परंतु कुल मिलाकर हमें दोनों आचार्यों की मान्यताओं में तात्विक अंतर नहीं दिखाई पड़ता। शुक्ल जी के जिस कथन को लेकर उन पर सांप्रदायिक इतिहास दृष्टि का आरोप लगाया गया है वह अपनी जगह सही है, परंतु आचार्य द्विवेदी इस गिरफ्त से मुक्त हो और उनकी अप्रोच पूर्णतः वैज्ञानिक हो ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण वर्मा का शुक्ल जी के बारे में अभिमत हम दे चुके हैं, आचार्य द्विवेदी के बारे में उनका अभिमत देखिए। भक्ति काल के बारे में द्विवेदी जी की अप्रोच मूलतः व अधिकांशतः भाववादी और सांस्कृतिक ही है, ठोस सामाजिक नहीं। साहित्य इतिहास को देखने की इस सांस्कृतिक दृष्टि की सबसे बड़ी सीमा इस बात में है कि आधुनिक काल के संदर्भ में आकर यह एकदम बेकाम हो जाती है। यह साहित्य का मध्यकाल भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आधुनिक साहित्य भी इसी विकास की अगली कड़ी क्यों नहीं है। आधुनिक युग के संदर्भ में द्विवेदी जी 12 आना वाली स्थापना नहीं कर सके, इसके विपरीत उन्हें यह कहना पड़ा कि सर्वत्र सुर बदल गया है, अंग्रेजी ढंग का अनुकरण हो रहा है, भारतीय चिंता अपना रास्ता केवल छोड़ ही नहीं चुकी है, भूल भी गई है। वस्तुतः द्विवेदी जी की अप्रोच की मूल गलती यह है कि वे जब भीतर की शक्ति की बात करते हैं तथापि वे भीतर की शक्ति के ठोस सामाजिक पक्ष में आने वाले बदलावों की ओर तवज्जो न देकर उनके वैचारिक और सांस्कृतिक पक्ष पर जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं। यही वजह है कि वे इन बदलावों के कारण परिपक्वतर बन रही स्थितियों को नहीं देख सके, जिनके चलते सिद्धों और नाथों की खंडनात्मक पूर्व परंपरा के तत्व कबीर आज संत कवियों के काव्य के ऊपर आ गए थे और पूरी तेजस्विता के साथ। इस प्रकार दोनों ही आचार्य इस्लाम के प्रति सही दृष्टिकोण रखते नहीं लगते। यदि शुक्ल जी भक्ति आंदोलन को इस्लाम की प्रतिक्रिया में प्रवर्तित मानने के कारण सांप्रदायिक आग्रह के शिकार हुए हैं, तो द्विवेदी जी इस्लाम के प्रभाव के प्रति बहुत कुछ अस्वीकार की मुद्रा अपना कर उसी आग्रह के घेरे में आ गए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों अप्रोचों के पीछे मूल दृष्टि तो लगभग एक ही है। लक्ष्मी नारायण वर्मा के आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी संबंधी अभिमत विचारणीय है। उनकी यह बात सही है कि आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी दोनों ने ही भक्ति काल और भक्ति काव्य के उदय और विकास की चर्चा करते समय सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों तथा उनके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को मद्देनजर नहीं रखा है, और यही कारण है कि भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक शक्तियों की उनकी पहचान में नहीं आ सकी है। हम आचार्य शुक्ल और द्विवेदी जी से मार्क्सवादी अप्रोच की आशा नहीं करते, परंतु यह भी सही है कि काव्य आंदोलनों और काव्य धाराओं के उद्भव में उनकी स्थिति और सक्रियता को दिखाए बिना उनकी सही व्याख्या नहीं की जा सकती। बहरहाल यह विषय विचार तलब है और इस पर विचार होना चाहिए। जहाँ तक आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के विवाद का संबंध है, आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार किया है कि अपनी स्थापनाएं देते समय वे अपने युवा उत्साह के तहत आक्रामक जरूर हो गए हैं। उनकी यह स्वीकृत उनकी विनम्र दत्ता का साक्ष्य है। आगे चलकर बजाय इसके कि भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य के सामाजार्थिक पहलुओं को उभारते हुए दोनों आचार्यों के प्रत्येक के बारे में संतुलित निष्कर्ष निकाले जाते, उनसे संबंधित विवाद को हवा देने की कोशिश ही अधिक हुई। डॉक्टर रामसो चतुर्वेदी ने कृष्णाश्रय प्रकरण का उल्लेख करते हुए शुक्ल जी के मत को सही सिद्ध करना चाहा। डॉक्टर रामदास शर्मा तथा डॉक्टर नामो सिंह ने क्रमशः आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी का पक्ष लेते हुए उनके स्थापनाओं को अपने अपने ढंग से सही सिद्ध करना चाहा और इस क्रम में तमाम सारे प्रश्न फिर से उठाए। परिणामतः भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य का सही सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पृष्ठभूमि में ही दबा रहा। जरूरत इसे भक्ति काव्य की पीठिका पर अंतः साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों की संगत में पहचानने और उभारने की है।